और देखिए इस सौदे की बातें करके ना आगे अब नबी की भी बेबसी की बात है। चंद आयते हैं लेकिन नबी सल्लम और हजरत इब्राहिम दोनों को जमा करके अब इस बार पूरी आयत को समझने के लिए ग्राउंड प्रिपेयर्ड है। खुलासा कर देती हूँ, हम अक्सर क्या कहते हैं ना से, मैं खुद नहीं भी ये सब करती जिसका जिक्र है, तो मेरा बाप तो इतना नेक था ना, और मेरे तो ससुर बड़े नेक थे, और हाँ मैंने अपने बच्चे को हाफिज़ भी तो बना दिया ना, और वो मेरी फलां सदका जारिया के काम नहीं चल रहे, तो खुशफहमियाँ खुलती हैं। आयत 113 देखिए, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल्मुशरिकीन वलो कानू ली कुर्बा। नबी और अहले ईमान के लिए ये लायक ही नहीं, ये रवा ही नहीं कि वो इस्तग़फार करें मुशरिकीन के लिए, ख्वाब व कराबतदार ही क्यों ना हो। मिन बादी मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, इसके बाद जबकि इन पर वाज़े हो चुका कि वो जहन्नमी है। पहली बात है कि नबी ही क्यों ना हो अपने मुशरिक रिश्तेदार जिन्होंने ये ऊपर वाली सारी सिफात नहीं ली, जिन्होंने इस सौदे पे साइन नहीं किए, उनको जन्नत में ले जाए। देखिए घर पे साइन करे बाप और माँ तो क्या गवर्नमेंट वो घर बच्चों को ऐसे पकड़ा देगी, ये मेरे दोस्त को दे दो, कहेंगे नहीं कागज़ों में आपके नाम पे। शौहर का बीवी को नहीं देते जब तक कोई प्रोटोकॉल ना गुजर जाए, दूसरे को कहाँ देंगे। यहाँ भी यही है कि किसी की नेकियां काम नहीं आएंगी, खुद ये सौदे करने पड़ेंगे। और इसी तरह इब्राहिम जिनकी कुर्बानियों की दास्तान ने पढ़ते पढ़ते अशरे ज़िलहज्जा गुजर गया, वमा कान इस्तग़फार इब्राहिम अली अबी इल्ला मौइदत वादहा इया, और नहीं था इस्तग़फार करना इब्राहिम का अपने वालिद के हक में मगर एक वादे की बुनियाद पे जो उन्होंने उससे किया था। यानी इब्राहिम ने भी अपने बाप के लिए दुआ नहीं थी करनी, पर बाप से वादा कर चुके थे। क्या वादा था? सूरत मरियम आयत 47 में जब बाप ने इनको घर से निकाला ना तो जाते जाते वादा किया, क्या कहा? सस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु काना बिही हफिया, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दरख्वास्त करूँगा, बेशक वो मेरे पे बड़ा मेहरबान है। यानी अपने पर्सनल टर्म्स यूज़ किए ये बात कह दी। लेकिन क्या हुआ? फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाही, और जब वाजे हो गया आप पर कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रा मिन्हु, तो आप उससे एलाने बेजारी कर दिया। हलक इन्ना इब्राहिम अल अव्वाहुन हलीम, यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत दर्दे दिल रखने वाले और हलीम तबा थे। बात वाजे, इब्राहिम जैसा नरम दिल शख्स भी अपने बाप को उस दिन फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि बाप ने इस प्लेज पे साइन नहीं किए। बाप जिंदा था तो उम्मीद थी कि अल्लाह हिदायत देगा, लेकिन जब मौत वाकई हो गई, इस्तग़फार बंद कर दिया, कुफर पे मर गया। तो फिर यहाँ पे वो मौज़ू अभी भी नहीं पूरा हुआ, इन्नल्लाह हश्तरा वाला, अपने अमल देखो खुद क्या हो। और अब सवाल पैदा होता है आखिर में कि इतनी बड़ी डील, इतना बड़ा सौदा, तो क्यों लोग उस पर साइन नहीं करते? अब उसका जवाब आखिरी दुआएतों में कि रब की कदर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि लेने कौन आया था हमारे घर चीज़, किसने हमसे डील करनी चाहिए और हमने अपनी शान में बड़े बनते हुए उसको पीछे कर दिया। आयत 115 देखिएगा, वमा कानल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बाद इज़ हदाहुम, और अल्लाह का ये तरीका ही नहीं कि किसी कौम को गुमराह कर दे इसके बाद कि इनको हिदायत दियो। यानी अल्लाह नहीं ऐसे लोगों को जहन्नुम में डाल देगा, या अल्लाह ऐसे नहीं है कि लोगों को छोड़ दे, हत्ता युबय्यिनु लहुम मा यत्तकून, जब तक इन पर वाजे न कर दे कि इन्हें किस चीज़ से बचना है। यानी गोया माफ़ी का ऐलान है इन लोगों के लिए जो इस हुक्म के नाजिल होने से पहले अपने मुशरिक वालदैन और रिश्तेदारों के लिए दुआ करते थे, क्योंकि इन्नल्लाह बिकुल्ली शयइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। पहले ये हुक्म वाजे नहीं था तो लोग दुआ करते थे, मरने के बाद भी करते थे, अब हुक्म आ गया छोड़ दो। इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्दि युही व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, यकीनन अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, वही जिंदा रखता है और वही मौत देता है, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और मददगार नहीं। यहाँ पे टॉपिक पूरा हुआ है कि ज़रा उसकी बादशाहत को तो देखो, उसके ज़मीनों आसमान के ख़जानों को तो देखो, फिर उसके साथ चलो। तो सारे सबक का खुलासा क्या निकला? पहली बात है, नुमाइशी नेकियां फ़ायदा नहीं देंगी। नेकी के नाम पे गुनाह मत करो, नियतों को चेक करो, तरीक़ेकार को चेक करो, और अगर कोई ऐसा काम कर चुके हो तो अभी भी पलटाओ। और फिर दूसरा हिस्सा, जान और माल बिकी हुई है, इसको दूसरों को पेश ना करो। अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले, उसकी हदूद की हिफाजत करने वाले चौकीदार बन जाओ। दीन में नई चीज़ों को आने ना दो, बिदात को दाखिल ना करो, प्लूटेड दीन लोगों को ना सिखाओ। और कल के दौर और आज के दौर की बातें छोड़कर अपनी जान माल अल्लाह के साथ लगा दो। और फिर आखिर में हमने देखा कि दूसरों की नेकियां आपको फ़ायदा तब देंगी जब आप ख़ुद भी नेक होंगे। और ख़ास तौर पर ये जो आखिर में मुशरिक रिश्तेदारों से ताल्लुक़ की बात है ना, तो याद रखिए कि सूरह तौबा उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब इस्लामी इनकलाब बिल्कुल अपने आखिरी मराहल पर पहुँच चुका था। अब मुसलमानों के पास एक पूरा सिस्टम था, ज़ाब्ता हयात था, तालीम तरबियत सब हो रही थी, अहकाम वाज़े थे, अदब अदाब थे। आप मोमिन को असल में बताया जा रहा है, ये आखिरी जुमले आपके मेरे लिए बड़ी कीमती हैं, कि मोमिन को ये बात बताई जा रही है कि उसके दिल और दिमाग के तमाम रिश्ते और इसकी ज़िंदगी की सारी प्रायोरिटीज़, तरजीहात अल्लाह के ताल्लुक के साथ होंगी। उसी के ताबे रहिए, जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बिस्मिल्लाह, वहाँ अच्छा सलूक, मुरव्वत, हमदर्दी, खैर ख्वाही करेंगे। लेकिन जो फिर अल्लाह के ताल्लुक के रास्ते की रुकावट हो, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और अल्लाह से मोहब्बत के लिए बाज़ दफ़ा दुनिया की कई मोहब्बतों से ताल्लुक़ तोड़ना ही पड़ता है। इसी का नाम तौहीद है, इसी को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। और यही सूरत में है कि बरात मिन अल्लाह व रसूल, क्या बेजार हो गया अल्लाह मुशरिकों से, तो तुम अपने रिश्तेदारों की गलत चीज़ों को नहीं छोड़ सकते और फिर कहते हो कि अल्लाह से जन्नत और उसकी मोहब्बत और उसका दीदार चाहिए। वो कहते हैं ना, बहुत सादा सा है अपना असूल दोस्ती कौसर, जो इनसे बेताल्लुक है हमारा हो ही नहीं सकता। दुनिया के लिए तो बातें बड़ी समझ आती हैं। और याद रखिए कि अब ये सूरत के ख़ात्मे की तरफ चल पड़े हम। इन आयात से और अगले कल के सबक में भी आप देखेंगे तौहीद की जो असल रूह है ना, वो नज़र आती है। और वो क्या, हर बात अल्लाह से होके गुजरे, हर रिश्ता अल्लाह के ताल्लुक के साथ बंधा हुआ हो, और ज़ाहरी दुनिया नहीं आखरत के मामलों को सामने रख के चलो। बस लोग कहते हैं कि ये आयतें अबू तालिब की वफ़ात के मौके पे भी नाजिल हुई, जिन्होंने अल्लाह के नबी की बड़ी मदद की, आपके लिए इस्लाम की खातिर आपकी मदद करते रहे, ख़ानदान बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, लोग उनके आगे खड़े रहे, और अल्लाह के नबी आखिरी वक्त तक ख्वाहिश रखते थे कि ये मुसलमान हो जाए। और बिस्तर मर पर उन्होंने इरादा भी जाहिर कर दिया, लेकिन अबू जहल की बात पर जो जुमले मुँह से निकले वो ये थे कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मर रहा हूँ। इस पे अल्लाह के नबी को रंज हुआ, आपने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक आपके लिए बख्शिश की दुआ करता रहूँगा जब तक मुझे रोक नहीं दिया जाएगा। तो ये आयत नाजिल हुई तो फिर आप रुके। तो बहरहाल ये एक ख़ास वाक़या शान-ए-नुज़ूल में है, लेकिन आम असूल ये कि जीते जी कुफार के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको ईमान दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह उनसे राज़ी हो। पर जहाँ मर गया कोई, अब उसके लिए ज़ाहिर मरने के बाद या तो जन्नत है या जहन्नम, उस पर फिर मुझे आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की जन्नत, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की जहन्नम वो जाने, उसके बंदे जाने। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम अभी ज़िंदा हैं और हम अपनी ज़िंदगी को ठोक बजा के देख लें कि अल्लाह का असूल कितना बेलाग है, कि सारी ज़िंदगी एक नबी बन के अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाला भी अपने करीबियों को नहीं बचा सकता, तो मैं और आप तो अभी तक अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए। कोई बात जो इन आयतों के बारे में हो, आप किसके आगे बिके हुए हैं ये आपने ख़ुद से पूछना है। क्या वाकई मैं अल्लाह के आगे बिकी हुई हूँ? क्या मैं अपनी जान को अल्लाह की अमानत समझती हूँ? इसलिए आपको तो ख़ुदकुशी भी हराम है, जिस्मानी तौर पे भी हम ख़ुद को नहीं मार सकते। तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ان إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير